नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल
और मैं हूँ सोनू।
कैसा लगेगा अगर इस एपिसोड को दो तीन बढ़िया मस्त वाली गालियों से स्टार्ट किया जाए?
यार ऐसी बात मत करो, हमारा फैमिली शो है।
अरे लेकिन आजकल जो कंटेंट चल रहा है इंटरनेट में, चाहे वेब सीरीज हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे यूट्यूब के चैनल हो, आप देखो इतनी बढ़िया बढ़िया गालियाँ देते हैं लोग और इतने ज़्यादा फेमस हो गए हैं गाली बक बक के, तो मुझे लगता नहीं कि आजकल लोगों को कोई फ़र्क पड़ता होगा गालियाँ सुन के।
ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ता है यार, अगर आप फैमिली के साथ हो फ़र्क पड़ता है, छोटे बच्चे आपके साथ है फ़र्क पड़ता है। हाँ हम अडल्ट है तो सुन सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सब जगह यही चल रहा है। मैं अभी रिसेंटली सब्जी लेने गई थी तो वहाँ पे बच्चे थे, बहुत बड़े नहीं थे, टीनेजर्स ही थे, तो वो खड़े होके मतलब बहुत ही ऐसे गाली गलौच वाली बातें कर रहे थे। हालांकि वो लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे थे, नॉर्मल वे में ही बात कर रहे थे, बट मुझे सुन के थोड़ा अजीब लगा कि यार कैसे बात कर रहे हैं ये लोग।
तो जो गालियाँ हैं ये हमारे समाज का बहुत पहले से ही हिस्सा है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये गालियाँ और भी ज़्यादा कुरूप होते जा रही है आजकल। इंटरनेट के आने के बाद तो इसको लोगों ने अपना एक हथियार बना लिया है कि कैसे आप ज़्यादा अब्यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे को और अपने आप को पॉपुलर कर सकते हैं गाली को यूज़ करके। उसके अलावा भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है गाली गलौज करना, जैसे स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो हर कोई एक दूसरे को गाली देता है या थोड़ी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बट ये ठीक नहीं है। एक समाज में आई डोंट नो लोग इसमें रिएक्ट कैसे करते हैं, बट मुझे ये ठीक नहीं लगता है। जब मैं कॉलेज में था उस समय भी मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ज़बरदस्ती हर एक शब्द के बाद में गाली यूज़ करते थे, हर कोई शब्द बोलने के बाद एक गाली यूज़ करेंगे, एक कोई ऐसा बैड वर्ड यूज़ करेंगे जो कि सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन जो लोग बोलते हैं आई थिंक उनको उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है।
हाँ जो लोग डेली बोलते हैं या हर बात में गाली देते हैं उनको सच में फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ या देखा है मैंने, तो वो क्या है, वो नॉर्मली बोलते हैं, उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि सामने वाला उनके बारे में क्या सोच रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर उनके घर में आप देखोगे और छोटे बच्चे होंगे तो उन पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये कल्चर जो है गाली देने का, ये डेवलप कैसे हुआ या कहाँ से आया, क्यों हम हमेशा गालियाँ देते हैं। मुझे लगता है जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और सामने वाले के साथ आप कुछ कर नहीं सकते, ना ही उसे मार सकते हो, ना किसी तरीके से हर्ट कर सकते हो, तो गाली देना उनको लगता है सबसे बेस्ट तरीका है, जिससे उनको बुरा लगेगा, वो हर्ट होंगे, इसलिए वो गालियाँ देते हैं। और क्या होता है, गाली दे के उनका मन एकदम शांत हो जाता है, तो वो अपनी भड़ास निकालते हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ज़्यादा गाली देते हैं जिनका अपने ऊपर काबू कम होता है, और ऐसे लोग ना ज़्यादा जज्बाती और कमज़ोर भी होते हैं।
देखो गाली देने वाला गलत ही होता है, तो सबसे बेस्ट है अगर वो आपको गाली दे रहा है तो रिएक्ट ही मत करो, उसकी गाली उसी के पास रहेगी। तो इसी पे एक कहानी है जो मैंने पढ़ी थी, बहुत ही अच्छी कहानी है, मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे, तो वहाँ पर एक आदमी आता है, वो बहुत ही गुस्से में होता है, पता नहीं उसको क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता है वो, और गौतम बुद्ध को भला बुरा कहना शुरू कर देता है, ज़ोर ज़ोर से गालियाँ देना शुरू कर देता है। तो ऐसा बहुत देर तक चलता रहता है, तो वो आदमी देखता है कि गौतम बुद्ध जैसे बैठे थे वैसे ही शांत स्वभाव से बैठे हैं, कुछ रिएक्ट ही नहीं करते। तो फिर और तेज़ चिल्लाने लगता है, बहुत तेज़ चिल्लाने लगता है, फिर से दुर्व्यवहार करता है, गालियाँ देता है, लेकिन गौतम बुद्ध फिर भी शांत स्वभाव से बैठे रहते हैं। फिर वो आदमी जब थक जाता है, थक हार के बोलता है, मैं आपको तब से गालियाँ दे रहा हूँ, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तो गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारी गालियाँ ली ही नहीं। तो वो आदमी बोलता है, जब मैंने आपको मेरी गालियाँ दी है तो आपने कैसे नहीं ली, वो तो आपके पास ही आई ना। तो गौतम बुद्ध उससे बोलते, अच्छा एक बात बताओ, तुम किसी को अगर पैसे देते हो और वो इंसान पैसे लेने से मना कर दे तो वो पैसे किसके पास रहेंगे? तो वो आदमी बोलता है, अगर मैं किसी को पैसे दूँ और उसे ज़रूरत नहीं है तो वो पैसे मेरे पास ही रहेंगे। तो फिर गौतम बुद्ध बोलते कि उसी तरह से जो भी तुमने मुझे दिया वो मैंने नहीं लिया, इसीलिए वो जो दुर्व्यवहार तुमने मेरे साथ किया या जो गालियाँ दी वो तुम्हारे साथ ही रहेंगी। तो उस आदमी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो गौतम बुद्ध से क्षमा मांगता है। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई गालियाँ देता है तो आपको नहीं लेनी है, आपको रिएक्ट ही नहीं करना है, तो वो गालियाँ उसी के पास रहेंगी।
तो गौतम बुद्ध को गालियाँ इसलिए नहीं लगी और उन्होंने इसलिए रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वो बहुत ही शांत बैठे थे, और जो भी इंसान एकदम शांत हो ना ऐसी सिचुएशन में जिसको रिएक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, तो वाकई में उस आदमी को गालियाँ लगती भी नहीं है। तो सबसे पहले तो गालियाँ जो भी देता है उनको गालियाँ छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। और जहाँ तक समाज का हिस्सा बन गई है गाली, तो उसमें तो हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, उसके लिए तो समाज ही करेगा जो भी करना है। लेकिन हम अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, अपने बच्चों को हम लोग वो एनवायरनमेंट दे सकते हैं ताकि उनके साथ वो ना हो जिस कारण हम लोग बिगड़े थे या हम लोगों ने गालियाँ सीखी थी।
हाँ, बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको अर्नव का एग्जांपल देती हूँ। एक दिन अर्नव एक्चुअली गेम देखता है, गेम के कुछ वीडियोस देखता है यूट्यूब में, तो जिसका वो देख रहा था वो बंदा बहुत ही गालियाँ दे रहा था। अब अर्नव को ये नहीं पता कि उनका मीनिंग क्या है, वो जस्ट सुन रहा था, वो इन्जॉय कर रहा था, क्योंकि वो गेम में उसका पूरा ध्यान था, उसको नहीं पता कि वो बोल क्या रहा है। तो मैंने जब सुना, मैंने तुरंत स्वप्निल को बुलाया और हमने उसको बोला कि आज के बाद आप इस चैनल को नहीं देखोगे। तो अर्नव ने बोला, क्यों मम्मा क्या हुआ? मैंने बोला, नहीं वो अच्छे वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे थे। तो वो बोलता है, मम्मा मैं तो जितने भी चैनल देखता हूँ ये गेम्स वाले, उसमें मोस्टली ऐसे ही बात करते हैं। तो हम लोग थोड़े से शॉक्ड हो गए कि ये लोग ऐसे कैसे यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज। इनको ये समझ में आना चाहिए कि बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, तो थोड़ा सा इनको कंट्रोल करना चाहिए अपनी जबान पे।
देखो, जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है वो अपने आप पे कितना कंट्रोल करता है उस पर हमारा तो बस नहीं है, लेकिन जिस पे हमारा बस है, जहाँ पे हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं अपने बच्चों को, बच्चा कौन सा कंटेंट देख रहा है, कौन से चैनल को देख रहा है, किसको फॉलो करता है, या टीवी में भी जो भी जितने भी ऐप हैं जिसके थ्रू आप मूवी देखते हो, उसमें भी पेरेंटिंग का ऑप्शन होता है, तो पेरेंटिंग लॉक करके हमेशा रखना चाहिए। लेकिन फिर भी जो ओपन कॉन्टेंट है उसमें भी बहुत ज़्यादा अभी लोग अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करने लगे हैं, तो उसको बचाने के लिए जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल में रखिए, अपने आप को बच्चों को थोड़ी बात कीजिए, समझाइए। एक दिन अर्नव आया मेरे पास और उसने एक वर्ड मुझे बोला कि पापा इसका मतलब क्या होता है। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि अर्नव को ये सब चीज़ें कैसे पता चली, लेकिन फिर मैंने उसको बहुत प्यार से समझाया, बेटा कि ये सारी चीज़ें ना ये बैड वर्ड होते हैं और इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट और कंटेंट इतना ज़्यादा ओपन है आज के समय में, लोगों को खुद नहीं पता है कि उसको कैसे यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है। और बिना टेक्नोलॉजी को यूज़ किए आजकल आप रह भी नहीं सकते। बच्चे इनफैक्ट दिन भर मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कनेक्टेड होते ही हैं इंटरनेट से। अगर आप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे तो दूसरा जो कोई बैठा हुआ है इंटरनेट में दूसरे तरफ, वो आपके बच्चों को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर देगा। तो ये जिम्मेदारी सबसे पहले पेरेंट्स की है कि वो समझे और वो एक गाइडलाइन तैयार करें कि क्या कंटेंट आपके बच्चों के लिए ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है।
तो ध्यान रखिए अपना, अपने बच्चों का और अपने परिवार का, और अच्छी अच्छी बातें सुनिए, देखिए और बोलिए। और अगर आपको सिर्फ अच्छी बातें सुनना है तो सुनते रहिए हमारा द फैमिली पॉडकास्ट, क्योंकि हम रोज आपके लिए एक नया टॉपिक और नया एपिसोड लेकर आते हैं। तो कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तो तब तक के लिए
बाय बाय,
टेक केयर।